कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 12वीं पुस्तक दूसरा राजा नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य आत्मिक लाभ प्राप्त हो रहा होगा। इससे पहले कि हम आज का अध्ययन आरंभ करें, आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने और समझने के लिए रेडियो के निकट बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों दूसरे राजाओं की पुस्तक उसके 19 अध्याय तक का अध्ययन कर चुके हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर की ओर से ऐसा हुआ कि रबशाके अपने देश को लौट गया, परंतु उसने हिजकिया को पत्र में लिखा कि वह लौटकर अवश्य आएगा। हिजकिया ने वह पत्र परमेश्वर को दिखाया और रक्षा की भीख मांगी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और अपने नाम और दाऊद के कारण दूत भेजकर 185,000 अश्शूर सैनिकों को मार डाला। सन्हेरीब स्वदेश लौट गया, जहां उसके पुत्रों ने उसका वध कर दिया और परमेश्वर ने इस प्रकार अपने कहे हुए वचन पूर्ण किए। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 20 से अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे हिजकिया का रोग और जीवन दान। लेकिन इससे पहले आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान प्रेम, दया और करुणा के लिए, जिसे आप हमारे जीवन में देते हैं। पिताजी, आज हम इसलिए जीवित हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और ये आपका अनुग्रह है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। जब हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं, आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दीजिए, ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करने के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकें। हमारी विनती है कि हमें आत्मिक रूप में बढ़ने में आप सहायता प्रदान करें। हमारे उन भाई बहनों के लिए भी हम विनती करते हैं जो निराश हैं, दुखी हैं, बीमार हैं और किसी न किसी रूप से समस्याओं में उलझे हुए हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका समाधान कैसे होगा। वे इस बात को जान सकें कि आप उनके समाधान हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उन्हें छुटकारा देना चाहते हैं। हाँ प्रभु, आप उन सब पर कृपा दृष्टि प्रदान करें। आज के अध्ययन के द्वारा हम सब से बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम अध्याय 20 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इसमें हम देखेंगे हिजकिय्याह का रोग और जीवन दान। यह अध्याय मेरे लिए बड़ा ही अर्थपूर्ण है, क्योंकि मुझे रोग और रोग मुक्ति का भी अनुभव है। मेरा यह अनुभव हिजकिय्याह के समान ही है। स्मरण रखें कि हिजकिय्याह एक असाधारण राजा था। सच तो यह है कि दाऊद के बाद उसके तुल्य अन्य कोई राजा नहीं हुआ। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा था, जैसा उसके पूर्वज दाऊद ने किया था। उसके विषय में यह परमेश्वर की गवाही है। तो आइए अब हम देखते हैं हिजकिय्याह का रोगी होना। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। मेरे मित्रों, हिजकिय्याह के रोग का उल्लेख धर्मशास्त्र में 3 बार आया है, दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय में, और दूसरे इतिहास की पुस्तक 32 अध्याय में, और तब यशाया के पुस्तक 38 अध्याय में, और प्रत्येक विवरण परिदृश्य में कुछ न कुछ जोड़ता है। यशाया के लिए राजा को हिजकिय्याह को उसकी मृत्यु का संदेश देना एक कठिन काम रहा होगा, तथापि यह एक स्पष्ट बात है कि मृत्यु का दंड हम सबके लिए है, चाहे हम उसका दिन और समय न जानते हो। मेरे प्रियो, इब्रानियों के पत्र अध्याय 9 उसके 27 पद में लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। यह परमेश्वर की ओर से नियुक्त समय है। यदि हम अपनी मृत्यु का समय जान भी लें, तो क्या हमारी जीवन शैली नहीं बदलेगी? मेरे प्रियो, विश्वासी प्रायः कहते हैं, मृत्यु तो दूर भविष्य की घटना है, मुझे आज इसकी चिंता नहीं करना है। ठीक है, हम उसकी चिंता ना करें, परंतु हमें इस बोध के साथ जीना है कि मृत्यु ही अंतिम लक्ष्य है। मेरे प्रियो, वर्षों पूर्व की बात है, एक युवा प्रचारक को उसके डॉक्टर ने कहा कि उसका कैंसर असाध्य है और उसका जीवन सीमित है, तो उसने अपने मित्रों को पत्र भेजा, उसकी डाक सूची में होना मेरा सौभाग्य था। मैं उसका पत्र पढ़कर अवाक रह गया। उसने लिखा था, पिछले कुछ दिनों में मैंने एक बात जान ली है, जब एक विश्वासी अकस्मात ही मृत्यु के आदेश का सामना करता है, तब वह भौतिक वस्तुओं का वास्तविक मूल्यांकन करना आरंभ करता है। मेरी मछली पकड़ने की बंसी, मेरी पुस्तकें, बगीचा आदि अब उतने कीमती नहीं जितने कि वे पिछले सप्ताह में थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम हिजकिय्याह के अनुभव को भी देखेंगे। आइए हम पढ़ें दूसरे राजाओं के पुस्तक 20 अध्याय उसके 2 और 3 पद। तब उसने भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने और तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। मेरे प्रिय मित्र, हिजकिय्याह ने दीवार की ओर अपना मुंह कर लिया और परमेश्वर से प्रार्थना की। मित्रों, मैं उसकी मनोदशा समझ सकता हूँ। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि आपको कैंसर है, और ना आप ना आपका डॉक्टर इसका परिणाम जानता है। मैंने कैंसर के रोगियों से भेंट की है। मैं इस बात को समझ रहा था कि उनके कैंसर का कारण क्या था, परंतु मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि उसका परिणाम क्या है। जब डॉक्टर ने कहा कि उसे कैंसर है, तब वह हिल गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह सच है। सच स्वीकार करने के बाद उस जीवन का आश्वासन दिया नहीं गया। आज भी कई लोग आश्वासन स्वीकार नहीं करते हैं। मैं बस इतना जानता हूं कि वह व्यक्ति रोगी है। क्या मैं आपसे कहता हूं, इससे आप में जीवन मूल्यों की अलग अलग समझ उत्पन्न होती है। मेरे प्रियो, आज मेरा जीवन कुछ अलग है। अनेकों ने कुछ क्षेत्रों में मेरे आचरण पर अचंभा किया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जब किसी प्रकार की बीमारी या तकलीफें आती है तो हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, परंतु हम परमेश्वर के निकटता में आकर उससे छुटकारे की मांग करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेडियो सेवा और सभाएं करके आत्महत्या कर रहे लोग बच रहे हैं। आप जान लें कि ऐसा करने से बहुत डर लगता है जो लोग आत्महत्या करते हैं। परमेश्वर को अप्रसन्न करना बहुत कठिन बात है। जब लोग अस्पताल में होते हैं तो लोग अपने रोग के परिणाम के विषय में नहीं जानते, परंतु चिंता अवश्य करते हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आप बीमार हैं? लोग कहते हैं हाँ बीमार हैं, और लोगों को आप देखें तो वे डर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि उनका परिणाम क्या होगा। मेरे मित्रों, एक विश्वासी स्त्री थी, उसने मुस्कुरा दिया और उसने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दें, और हिजकिय्याह की नाई दीवार की ओर मुंह करके वह व्यक्ति प्रभु को पुकार उठा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रभु से लोगों को यह कहते सुना है कि मैं मरना नहीं चाहता। जी हाँ, यह सच है कि इस संसार में रहते हुए लोग मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह परमेश्वर की एक देन है जिसे सबको स्वीकार करना है। यह मेरा विश्वास है कि जब हम बीमार हों तब हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अन्यों से भी अपने लिए प्रार्थना का निवेदन करना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं विश्वास द्वारा चंगाई में विश्वास करता हूँ, विश्वास के चंगा करने वालों में नहीं। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर चंगा करता है। मेरे एक परिचित जन ने एक व्यक्ति को पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप प्रभु के साथ होंगे। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि वह आपको घर ले जाए। उसने तुरंत उसे उत्तर दिया और लिखा, सुनिए, आप प्रभु को इसे संभालने दें, यह कहने का प्रयास न करें कि मेरी दशा क्या है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मैं जितना जी सकूं उतना जीना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, अस्पताल में दीवार की ओर मुंह करके उस व्यक्ति ने प्रभु से कहा, प्रभु, यदि तू मुझे चंगा कर दे तो मैं जहां जहां जा सकता हूँ वहां वहां तेरे वचन का प्रचार करूंगा। परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थना सुनी और उस व्यक्ति को उसने चंगाई प्रदान की और आज वह यही करने का प्रयास कर रहा है। मित्रों, उसे निराश करना नहीं चाहता क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह कहे कि प्रचारक सुन, मैं तुझे घर बुला रहा हूँ क्योंकि तूने जो कहा है वह तू नहीं कर रहा है। मेरे मित्रों, ऐसी दशा में जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण भिन्न होता है। एक अति उत्तम विश्वासी डॉक्टर ने मुझसे भी कहा कि वह मेरी सहायता नहीं कर सकता जब मैं बीमार था, परंतु मेरी चंगाई परमेश्वर से हो सकती थी। निसंदेह मैंने उसे यह अवश्य कहा कि यदि परमेश्वर काम कर रहा है तो अस्पताल का बिल उसने क्यों भेजा। मेरे प्रियो, यह बड़ी ही अद्भुत बात है कि आप ऐसे स्थान में हो जहां प्रभु पर भरोसा रखना आवश्यक हो। मेरे पास विकल्प नहीं है, यदि मैं परमेश्वर के पास नहीं जाऊं तो कहां जाऊंगा। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं और यह कहने में मैं धार्मिकता नहीं दर्शा रहा हूं, मैं इसके लिए बाध्य किया गया हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, हिजकिय्याह की स्थिति भी ठीक ऐसी ही थी, केवल परमेश्वर उसकी सहायता कर सकता था। दीवार की ओर मुंह करके उसने परमेश्वर से कहा कि वह सच्चाई और सिद्ध मन से परमेश्वर के सम्मुख चला था और उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में भला था। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पढ़ते हैं, और ऐसा हुआ कि यशाया नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मेरे मित्र, क्या ही अद्भुत बात है, परमेश्वर ने हिजकिय्याह के आंसू देखे। मुझे पूरा विश्वास है कि उसने आपके आंसुओं को भी देखे हैं, आपके तकलीफों को भी देखे हैं, और वह आपको भी चंगा कर सकते हैं। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 6 पद में लिखा है, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। मेरे प्रियो, यह तो शुभ संदेश है कि परमेश्वर उसे चंगा करके उसका जीवन 15 वर्ष बढ़ाएगा। आगे देखेंगे हिजकिया की चंगाई। दूसरे राजा की पुस्तक 20:7 में लिखा है, तब यशाया ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर ने प्राकृति ही की नहीं स्वर्गिक साधनों द्वारा हिजकिया को चंगाई दी। यह एक अद्भुत बात है। याकूब यही कहता है, याकूब की पत्री 5:14 में, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। प्रियो, तेल मलने की दो विधियां हैं, एक संस्कार है और दूसरा उपचार है। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाए हैं। याकूब उपचार वाले मलने की बात करता है। परमेश्वर याकूब के द्वारा कहता है कि वह अत्यधिक व्यवहारिक है। डॉक्टर को तो बुलाना है, परंतु साथ ही कलीसिया के प्राचीनों को भी बुलाना आवश्यक है कि वे प्रार्थना करें। प्रार्थना रोगी को चंगाई देगी। हिजकिया के फोड़े पर अंजीर लगाया गया था और अति संभव है कि वह कैंसर था। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे 15 वर्ष और दूंगा, परंतु तू फोड़े पर अंजीर की टिकिया लगा। मेरे प्रियो, मेरे कहने का अर्थ है कि धर्मान्य न बने परंतु बुद्धि का उपयोग करें। यदि आपको कैंसर है तो उसका सामना करें। मैं तथ्यों को जानना चाहता था और हिजकिया के तथ्य जानना चाहता था। विश्वास करें, परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। उसने परमेश्वर से 15 वर्ष का जीवन और प्राप्त किया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20:8 में लिखा है, हिजकिया ने यशाया से पूछा, यहवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा। मेरे प्रियो, हिजकिया ने अपना जीवन बढ़ जाने का परमेश्वर से चिन्ह मांगा, परंतु परमेश्वर ने मुझे जीवन दान का कोई चिन्ह नहीं दिया था। यह तो मेरे स्वर्गीय पिता के हाथ में है, परंतु मैं यही कामना करता हूं कि जितना अधिक हो सके उतना अधिक वह मुझे और आपको जीवन दे। यदि उसकी योजना कुछ और है तो उसे भी हमें स्वीकार करना है। परमेश्वर की इच्छा में हमेशा ही हमारा जीवन बढ़ाना नहीं है। आरंभिक कलीसिया में याकूब शहीद हुआ था, उसे हेरोदेस ने घात किया था, जबकि पतरस को बंदी गृह में चमत्कारी रूप से निकाला था। मैं इस भेद को नहीं समझता। उसने एक को बचा लिया और एक को मरने दिया। यह सब परमेश्वर का प्रावधान है। हम केवल उसकी इच्छा पूर्ति चाहते हैं। मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। मुझे अपनी इच्छा से समझौता करने के लिए झुका, वह कुछ भी हो, परंतु मैं परमेश्वर पर प्रकट करूंगा कि मैं इस बारे में कैसा प्रतीत करता हूं। मैं एक प्रिय महिला से भेंट करता था जो ऐसी पीड़ा में थी कि उसे चंगाई की आशा नहीं थी। उसने कहा, आप मेरी चंगाई की प्रार्थना न करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे उठा ले, और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। मित्रों, मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करता हूं जब तक कि कोई मुझसे न कहे। हम दूसरे राजाओं के पुस्तक 20:9-11 में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, यशाया ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी व 10 अंश घट जाएगी। हिजकिया ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशाया भविष्यद्वक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की और लौटा दिया। मेरे मित्रों, हिजकिया की मूर्खता को देखें। यह हिजकिया के जीवन का वह परिप्रेक्ष्य है जो मेरी आत्मा का रंग उड़ा देता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20:12 में लिखा है, उस समय बलदान का पुत्र बरोद बलदान जो बाबेल का राजा था उसने हिजकिया के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। मित्रों, हम देखते हैं उसने बधाई और भेंट भेजी। दूसरे राजाओं के पुस्तक 20 अध्याय के 13 पद में लिखा है, उनके लाने वालों की मानकर हिजकिया ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिया के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। मेरे प्रिय मित्रों, हिजकिया ने यह मूर्खता का काम किया था। उसने सुलेमान का भंडार उन्हें दिखा दिया, वहां संपूर्ण विश्व का खजाना भरा पड़ा था। हिजकिया का दिल बहुत बड़ा था। बाबुल के राजा ने उसे चंगाई की बधाई भेजी थी, अतः उसने बाबुल के दूतों को अपना राज्य ही दिखा डाला। ऐसी मूर्खता कई बार हम में से कई लोग कर बैठते हैं। दूसरे राजाओं के पुस्तक उसके 20 अध्याय और 14 और 15 पद में पढ़ते हैं, तब यशाया भविष्यद्वक्ता ने हिजकिया राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिया ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बाबेल से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिया ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में की कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें न दिखाई हो। उसने उनका लाल कालीन स्वागत किया और सब कुछ उन्हें दिखा दिया। तब आगे लिखा है दूसरे राजाओं के पुस्तक 20 अध्याय उसके 16 और 17 पद में, यशाया ने हिजकिया से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है वह सब बाबेल को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। मेरे मित्रों, उन दूतों ने उसके खजाने की सूची बनाई और अपने साथ ले गए। अब वे जान गए थे कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सोना कहां से मिलेगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 18 पद में लिखा है, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कितनों को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बाबेल के राजभवन में रहेंगे। हिजकिया की संतान के साथ ऐसा होगा, ये बातें बताई गई है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय के 19 पद में आगे लिखा है, हिजकिया ने यशाया से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, क्या मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी न रहेगी? यहाँ पर मुझे हिजकिया का उत्तर अच्छा नहीं लगा। वह पाप के पश्चाताप का वचन नहीं था, वह तो केवल अपने राज्य में शांति चाहता था। अपने संतान पर आने वाले संकट की उसे लेश मात्र भी चिंता नहीं थी। हम आगे देखते हैं हिजकिया की मृत्यु। दूसरे राजाओं की पुस्तक 20 अध्याय उसके 20 और 21 पद में पढ़ते हैं, हिजकिया के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किस रीति उसने एक पोखरा और नाली खुदवा कर नगर में पानी पहुंचा दिया, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान हिजकिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे लिए यह कहना अशिष्ट प्रतीत होता है कि उसे रोग के समय ही मर जाना चाहिए था। नव जीवन पाकर उसने तीन मूर्खता के काम किए। उसने बाबुल के दूतों को अपना खजाना दिखाया जिसके कारण भविष्य में यहूदा पर संकट आया। उसने मनश्शे को उत्पन्न किया जो सबसे अधिक दुष्ट राजा हुआ। अंतिम दिनों में उसका मन घमंड से फूल गया, वह हठीला हो गया था। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 32 अध्याय और 25 पद में लिखा है, परंतु हिजकिया ने उस उपकार का बदला न दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा पर और यरूशलेम पर भड़का। तो देखा आपने, यदि वह परमेश्वर के निर्धारित समय पर मर जाता तो अच्छा था। मेरे प्रियो, यही कारण है कि मैं अत्यधिक सावधान रहना चाहता हूं। प्रभु ने मुझे मरने से बचाया है और मैं उसके अपमान का कारण नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, यह एक अनुपम अध्याय है। हमारे पास एक अद्भुत स्वर्गीय पिता है जो हम सबसे प्रेम करता है। कई बार हम जीना तो चाहते हैं, लेकिन उस जिंदगी को जिसे परमेश्वर मुझे और आपको देता है, हम उसे भूल बैठते हैं और वही कार्य करते हैं जो परमेश्वर के विपरीत है। हम इस बात को भूल जाते हैं, जैसे कि कई बार आप में से कई लोग एक्सीडेंट से बच गए हैं, दुर्घटनाओं में बच गए हैं और बीमारियों में बच गए हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर के निकटता में हैं? आप ये सोचते हैं कि अरे मैं तो बच गया, लेकिन आप इस बात को भूल बैठे हैं कि आप नहीं बचे, परंतु परमेश्वर ने आपको जीवन दान दिया है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन से उन महान कार्यों को करना चाहता है। मेरे मित्र, आज परमेश्वर आपको फिर से इस वचन के द्वारा स्मरण दिलाना चाहता है और बताना चाहता है कि आप उसके हैं। ये जीवन जो आपके अंदर है, यह भी उसी के द्वारा दिया हुआ है, लेकिन आप किस रीति से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हिजकिया को 15 वर्ष जीवन दान मिला, लेकिन उसने वह किया जो बुरा था। आपका जीवन कैसा है? आप पीछे मुड़के अपने जीवन को देखें कि आप कहां पर खड़े हैं। मेरे मित्र, आज हमारे अध्ययन का समय यहां पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपने आज के इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में हिजकिया के जीवन के द्वारा एक नई आशीष की बातों को सीखा है। परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसके निकटता में अपने जीवन जिए और परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूर्ण होने दें। आप निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु आप सबकी सहायता करें एवं आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जमा दिया है तूने हमें, मिलकर लाते हैं हम तारीफ तुझे। जमा दिया है तूने हमें, मिलकर लाते हैं हम तारीफ तुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हम सब आते हैं करने स्तुति, धन्यवाद प्रभु की हम सब आते हैं। धन्यवाद प्रभु की, हम सब आते हैं, हम सब आते हैं।